नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है श्रोताओं कि इन दिनों हम कैंसर के विषय में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस जानकारी से आपको बहुत लाभ मिल रहा है। आज भी हम इसी श्रृंखला के अंतर्गत कैंसर के विषय में बातचीत करेंगे, तो आइए देखें डॉक्टर लुका कैंसर के बारे में क्या कहते हैं। आइए सुने डॉक्टर लुका की ये वार्ता।
प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आभा 45 वर्ष की थी और वो अपनी सहेली के साथ कमर के कैंसर की चर्चा कर रही थी, क्योंकि उनकी एक सहेली हाल ही में कमर के कैंसर से मर गई थी। वह अभी 48 वर्ष की ही थी। उसके गुप्तांग से रक्त स्राव होने के कारण वह अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने उसकी कमर का परीक्षण किया और कमर में से उत्तक निकालकर प्रयोगशाला भेज दिए। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसे कैंसर था। आभा की सहेली का ऑपरेशन करके उनके प्रजनन अंगों को निकाल दिया गया और उसे रे चिकित्सा तथा रासायनिक चिकित्सा दी गई, परंतु उसका रोग इतना अधिक बढ़ गया था कि वह असामान्य हो गया था। कैंसर निदान के 18 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने बारे में और अपने देश के बारे में सोचने लगी कि उनकी क्या स्थिति है। वह अपनी एक सहेली के पास गई। उनकी सहेली स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उन्होंने उससे कमर के कैंसर के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अफ्रीका में कमर का कैंसर अधिक नहीं है, परंतु यौन रोगों के बढ़ने के कारण उसके बढ़ने की संभावना है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या इस कैंसर को पहचानने के लिए कोई विशेष लक्षण है, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसी संभावना नहीं है। मित्रों, कमर के कैंसर की यह एक महत्वपूर्ण बात है कि वह एक शांत हत्यारा है। कमर के कैंसर के बढ़ने तक उसके लक्षण बहुत कम होते हैं। यदि ऐसा है तो सही समय पर निदान कैसे किया जाए? डॉक्टर ने उन्हें बताया कि पैप स्मियर परीक्षण है, जो अन्य देशों में तो है परंतु अफ्रीका में नहीं है। यह परीक्षण 20 से 65 वर्ष की स्त्रियों पर प्रतिवर्ष किया जाए तो कमर का कैंसर समय से पूर्व पकड़ में आ जाता है और तब उपचार करना आसान होता है। उन्होंने जानना चाहा कि यह कैसे किया जाता है, तो डॉक्टर ने आभा और उसकी सहेली को बताया कि रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उसकी कमर से उत्तक निकाले जाते हैं। इसमें कोई कष्ट नहीं होता है, यह रक्त परीक्षण भी नहीं है। इन उत्तकों को प्रयोगशाला में भेजा जाता है। यह एक बहुत ही जरूरी परीक्षण है और प्रयोगशाला में डॉक्टर को कैंसर कोशिकाओं की पहचान में दक्ष होना चाहिए। कम अनुभवी डॉक्टर आरंभिक चरण के कैंसर को पहचानने में चूक सकता है। मित्रों, आभा और उसकी सहेली ने जानना चाहा कि अफ्रीका की स्त्रियां पैप स्मियर परीक्षण क्यों नहीं करवाती हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, यह बहुत महंगा पड़ता है, परंतु आर्थिक विकास के कारण आगे चलकर स्त्रियां इसका व्यय सहन कर पाएंगी। दूसरा कारण है, अफ्रीका में कमर का कैंसर बहुत कम है और स्त्रियां सोचती हैं कि इस प्रकार पैसा गंवाना उचित नहीं है। परंतु आभा और उसकी सहेली ने यही देखा कि पैप स्मियर वास्तव में महंगा नहीं है यदि उसकी तुलना कैंसर के उपचार के व्यय से की जाए। उसकी सहेली जो कमर के कैंसर से मर गई थी, उसने डॉक्टर की फीस, अस्पताल का खर्च, रे चिकित्सा और रासायनिक चिकित्सा पर जो बहुत अधिक पैसा गंवाया था, इसके अतिरिक्त उन्होंने उसकी मृत्यु से पूर्व कैंसर के कारण उसकी पीड़ा को भी देखा था। मित्रों, आभा और उसकी सहेली जानना चाहते थे कि यौन रोग कैसे कैंसर को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इन रोगों के कारण प्रजनन अंगों में स्थायी जलन उत्पन्न हो जाती है, जो आगे चलकर कैंसर में बदल जाती है। इसलिए अफ्रीका में यौन रोगों में वृद्धि के कारण कमर के कैंसर में भी वृद्धि होने की संभावना है। अपनी सहेली के कष्ट और यौन रोगों में वृद्धि और कमर के कैंसर में वृद्धि से आभा परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या कोई इसका समाधान है। मनुष्य यदि ऐसा कष्ट उठाए तो जीवन का अर्थ ही क्या है। वह जानती थी कि उसकी सहेली ने बहुत कष्ट उठाया था, यद्यपि मनुष्य मृत्यु के बाद जीवन पर विचार नहीं करता है। मित्रों, आभा को इस बारे में सोचना ही पड़ा, क्योंकि वह उसकी घनिष्ठ सहेली थी। आभा को स्मरण हुआ कि उसकी एक सहेली ने वर्षों पूर्व उसे प्रभु यीशु के बारे में बताया था और उसे एक पुस्तक भी पढ़ने को दी थी। शायद वह पुस्तक उसके पास थी। उसने खोज करके वह पुस्तक निकाली और वह बाइबल थी। बाइबल के प्रथम पृष्ठ पर उसकी मित्र ने उसको पढ़ने हेतु कुछ संदर्भ लिखे थे। उसने पहला संदर्भ देखा, वहां इस प्रकार लिखा था, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मित्रों, यह अंश हमें रोमियो उसकी तीसरे अध्याय और 23 पद में मिलता है। उसे स्मरण हुआ कि उसकी वह सहेली प्रभु यीशु को मानती थी और उसने कहा था कि परमेश्वर के विरुद्ध चलना पाप है, हमारे लिए उसकी योजना के विपरीत चलना। मित्रों, आभा को यह बोध हुआ कि उसने ये वह काम किए हैं जो अनुचित हैं और बिना विचार किए वह उन्हें करती गई। अगला संदर्भ था रोमियो उसका 6वां अध्याय और 23 पद, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इससे स्पष्ट था कि पाप के कारण मृत्यु आती है। उसकी सहेली के साथ ऐसा ही हुआ था। मित्रों, पहले के पद से उसने यह भी जाना कि सबने अनुचित काम किए हैं। वह इस बात से सहमत थी कि ऐसा कोई नहीं है जिसने एक भी बुरा काम ना किया हो। कुछ का तो जीवन दुष्टता से भरा है। इस पद के दूसरे भाग ने आभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जहाँ पे इस प्रकार लिखा था, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनंत जीवन है। कैसी उत्तम प्रतिज्ञा है मित्रों, ये अनंत शून्यता या अनंत मृत्यु नहीं, अनंत जीवन। यह तो वास्तव में विचारणीय विषय है। यह ऐसा वरदान है जिसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसने अगला संदर्भ इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8-9 पढ़ा, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मित्रों, इस पद से उसे और अधिक समझ में आया। इसमें लिखा है कि हम विश्वास प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, परंतु आभा को समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वास करें तो किस में विश्वास करें। उसे उद्धार के लिए प्रभु यीशु में विश्वास करने की क्या आवश्यकता थी। उसके मन में अनेक प्रश्न थे और उसके विचार में बाइबल ही उनका उत्तर है। मित्रों, इसलिए वह प्रतिदिन बाइबल पढ़ने लगी। आभा और उसकी सहेली कमर के कैंसर और उसके उपचार के बारे में अधिक जानकारी चाहती थीं। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि सबसे उत्तम बात तो रोकथाम है, जैसे पैप स्मियर। इसके लिए अतिरिक्त अन्य रोकथाम उपाय था ही नहीं। यदि पैप स्मियर द्वारा कैंसर समय पर पकड़ में आ जाए तो उसका उपचार संभव है। एक और बात है कि 65 के बाद स्त्रियों को कमर का कैंसर नहीं होता है। मित्रों, यदि कैंसर बढ़ गया तो फिर उसका उपचार आसान नहीं है। ऑपरेशन द्वारा इस अंग को निकाल देना ही सर्वोत्तम उपचार है। उसके बाद रासायनिक चिकित्सा और रे चिकित्सा की जाए। कुछ रोगियों को दोनों की ही आवश्यकता होती है, वरन तीनों की, ऑपरेशन, रसायन चिकित्सा और रे चिकित्सा। जबकि रसायन चिकित्सा और रे चिकित्सा के बहुत गहरे प्रभाव होते हैं और असुविधा भी बहुत होती है। आभा ने अपनी सहेली को देखा था जो कैंसर के कारण मर गई थी। मित्रों, आभा की सहेली ऑपरेशन के कारण बहुत दुर्बल थी और फिर तुरंत उसे रासायनिक चिकित्सा करवानी पड़ी। मित्रों, उसकी सहेली का बहुत जी मचलाता था और उसके सिर के बाल भी झड़ गए थे, क्योंकि रे चिकित्सा उसकी कमर में की जाती थी और उसे कब्ज की शिकायत भी थी और जी मचलना बहुत होता था। अंत में कैंसर भी उसे बहुत पीड़ित करता था, क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसे इतना अधिक कष्ट क्यों उठाना पड़ा। आभा ने अब तक बाइबल में बहुत कुछ पढ़ लिया था और रोमियो उसके 8वें अध्याय और 28-39 से उसे बहुत शांति प्राप्त हुई, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। यह प्रतिज्ञा आभा के लिए ही नहीं, सबके लिए महान प्रतिज्ञा है। हम चाहे परिस्थिति को बुरा समझें, सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति है। और यही नहीं मित्रों, परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हमें परमेश्वर के समक्ष हमारे पापों से बचा ले। हम जानते हैं कि हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं और प्रभु यीशु सेतु है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आकर अनंत जीवन पा सकते हैं और हमें परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रभु यीशु के द्वारा है। मित्रों, आभा ऐसा ही प्रेम चाहती थी कि उसे संसार में शांति ही नहीं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन भी मिले। वह सोचने लगी कि उसे ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त होगा। उसकी वह चीनी सहेली जिसने उसे बाइबिल दी थी बहुत दूर चीनी उपनगर में रहती थी, उससे संपर्क करने की संभावना कम थी, परंतु उसके पास उसका पता था। उसने उसे पत्र लिखा और अपना टेलीफोन नंबर तथा पता भेजा। एक सप्ताह बाद उस सहेली ने उसे फोन किया और प्रभु यीशु के बारे में अनेक प्रश्न के उत्तर दिए। उसने उसे बाइबल में पढ़ने के लिए रोमियो उसका 5वां अध्याय और 1 पद का संदर्भ भी दिया जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मित्रों, आभा को इसी शांति की खोज थी। उसने अपनी सहेली से पूछा कि उसे वह शांति कैसे मिलेगी। उसकी सहेली ने कहा कि उसे प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करना होगा, परंतु वह यह कैसे करे। उसकी सहेली ने उसे बाइबल से रोमियो उसका 10वां अध्याय और 9:10 का संदर्भ दिया जो प्रभु यीशु को ग्रहण करना समझाता है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मित्रों, आभा की सहेली ने उसे समझाया कि पापों से उद्धार पाने के लिए और अनंत जीवन के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है, अर्थात वह जगत का प्रभु है और वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया कि हमें पापों का बोझ ना उठाना पड़े। मित्रों, हमें मन में यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया। यीशु का पुनरुत्थान प्रकट करता है परमेश्वर पाप और मृत्यु पर सामर्थी है। इन दो बातों पर विश्वास करके हम उद्धार पाएंगे। आभा को इस उद्धार और इसके साथ शांति और प्रेम की आवश्यकता थी। उसकी सहेली ने उसके साथ प्रार्थना की, प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानती हूँ कि मैंने अनुचित काम किए हैं और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पापों के कारण क्रूस पर मर गया और फिर जी उठा। वह आज जीवित है। मैं विनती करती हूँ कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आकर मुझे पापों से बचाएं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मित्रों, इस प्रार्थना के बाद आभा के मन में और मस्तिष्क में एक अद्भुत शांति आ गई, ऐसी शांति जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। अब उसे प्रभु यीशु के साथ बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन मिल गया था। मित्रों, अगर आप भी ऐसी शांति और अनंत जीवन चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना करें जो प्रार्थना आभा ने करी। प्रभु आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ मिला होगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 5882041 याद रहे 0995882014। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।